कतर फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे ब्रिटिश दार्शनिक की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं जिन्होंने 20वीं सदी में मन को लेकर हमारी समझ को कहना चाहिए कि पूरी तरह से चुनौती दी। नाम है गिलबर्ट रायल।
हाँ, गिलबर्ट रायल 1900 से 1976 तक उनका जीवनकाल रहा और उनके विचार खासकर मन और शरीर के संबंध को लेकर आज भी मतलब बहुत प्रासंगिक हैं और उनपे काफी बहस होती है।
बिल्कुल, और जैसे ही रायल का नाम आता है एक जुमला तुरंत दिमाग में कौनता है, मशीन में भूत, गोस्ट इन द मशीन।
सही कहा, पर ये कोई हॉरर कहानी नहीं है, ये तो डेकार्ते जैसे दार्शनिकों के उस पुराने विचार पर रायल का एक तीखा व्यंग था। वो विचार कि हमारा शरीर बस एक मशीन है और उसमें कहीं कोई अनदेखा मन या आत्मा जैसा भूत है जो उसे कंट्रोल करता है। रायल ने कहा, रुकिए, ये सोचने का तरीका ही मतलब फंडामेंटली गलत है।
हाँ, और यही आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय रहेगा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि रायल ने इस मशीन में भूत वाली सोच को क्यों और कैसे गलत ठहराया, भाषा और हमारे रोजमर्रा के व्यवहार पर उन्होंने इतना जोर क्यों दिया,
और मन को समझने का उनका नजरिया आखिर था क्या। उनकी वो बेहद मशहूर किताब है 1949 की, द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, वो इस सफर में हमारी गाइड होगी एक तरह से।
और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है ना, रायल के सवाल आज भी जिंदा हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव साइंस, इन सब में उनके विचारों की गूंज सुनाई देती है।
बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं रायल के दर्शन की इस दिलचस्प दुनिया की खोज।
सबसे पहले थोड़ा उस जमाने को समझ लेते हैं, 20वीं सेंचुरी का शुरुआती और मध्य दौर। ब्रिटेन, दो विश्व युद्ध देख चुका समाज, कैसा बौद्धिक माहौल था वो?
माहौल जैसे आपने कहा काफी उथल पुथल वाला था। पुराने जो बड़े बड़े दार्शनिक सिस्टम थे जैसे ब्रिटिश आइडियलिज्म, वो अपनी पकड़ खो रहे थे।
अच्छा,
और नए विचार, सोचने के नए ढंग सामने आ रहे थे, खासतौर पर विश्लेषणात्मक दर्शन यानी एनालिटिक फिलॉसफी।
हाँ, का उदय हो रहा था।
यानी फिलॉसफी का फोकस बदल रहा था, बड़े सिद्धांतों से हटकर भाषा, तर्क और कॉन्सेप्ट्स के बारीक विश्लेषण पर।
हाँ बिल्कुल, रसेल विटगेंस्टाइन जैसे लोग इसी धारा के थे। वो कह रहे थे कि दार्शनिक समस्याओं को समझने के लिए पहले हमें अपनी भाषा को समझना होगा, शब्दों के अर्थ, उनका प्रयोग, इन पर ध्यान देना होगा।
तो रायल भी इसी माहौल का हिस्सा थे, ऑक्सफोर्ड में।
जी हाँ, रायल ऑक्सफोर्ड में थे और विटगेंस्टाइन के बाद के विचारों का, भाषा को लेकर जो उनके विचार थे, उनका रायल पर गहरा असर पड़ा। उनके साथी थे जे.एल. ऑस्टिन, वो भी ऑक्सफोर्ड में सामान्य भाषा दर्शन के बड़े नाम थे।
और रसेल और मूर का प्रभाव?
रसेल और जी.ई. मूर की जो विश्लेषण की पद्धतियां थीं, उन्होंने भी रायल के सोचने के तरीके को एक दिशा दी। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने हुसर्ल के फेनोमेनोलॉजी से भी संवाद किया, हालांकि वो ज्यादातर आलोचनात्मक ही था। तो रायल एक तरह से ऑक्सफोर्ड में सामान्य भाषा दर्शन के अगुआ बन गए।
हाँ, और उनका मूल मंत्र क्या था? कि ज्यादातर दार्शनिक समस्याएं असल में भाषा की गड़बड़ियों से पैदा होती हैं।
हाँ, यही उनका मानना था कि हम शब्दों का गलत इस्तेमाल करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को गलत कैटेगरी में डाल देते हैं और फिर उन्हीं उलझनों को बड़ी बड़ी दार्शनिक समस्याएं समझ बैठते हैं।
मानो हम अपनी ही बनाई भाषा की भूल भुलैया में फंस गए हो।
चलिए अब थोड़ा उनके जीवन पे नजर डालते हैं।
जन्म 1900 में ब्राइटन, इंग्लैंड।
हाँ, एक पढ़े लिखे परिवार में, पिता डॉक्टर थे तो घर में बौद्धिक माहौल था ही।
और शिक्षा ऑक्सफोर्ड में हुई, पहले क्लासिक्स फिर फिलॉसफी।
जी, क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड से, और फिर तो पूरा अकादमिक जीवन ऑक्सफोर्ड में ही गुजरा। पहले लेक्चरर बने क्राइस्ट चर्च में और फिर 1945 में मेटाफिजिकल फिलॉसफी के वेनफ्लीट प्रोफेसर बने, जो कि बहुत प्रतिष्ठित पद था। 1968 तक वो इस पद पर रहे। इस अनुभव का उनके दर्शन पर कोई असर पड़ा होगा शायद, कैसे जाने और क्या जाने वाले फर्क को लेकर?
ये बहुत संभव है। देखिए, खुफिया काम में सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना काफी नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करना है, हालात को समझना, ऑपरेट करना। ये सब नोइंग हाउ है, सिर्फ नोइंग दैट नहीं। तो हो सकता है इस अनुभव ने उनके इस विचार को और पुख्ता किया हो कि व्यावहारिक कुशलता कितनी जरूरी है।
ये दिलचस्प कनेक्शन है।
और एक और अहम बात उनके करियर की, वो करीब 25 साल तक 1947 से 1971 तक मशहूर फिलॉसफी जर्नल माइंड के एडिटर रहे।
25 साल, ये तो बहुत लंबा कार्यकाल है।
हाँ, और इस भूमिका में उन्होंने एंग्लो अमेरिकन फिलॉसफी की दिशा को प्रभावित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। माइंड को दुनिया के टॉप जर्नल्स में बनाए रखा।
तो अब आते हैं उनके सबसे बड़े काम पर, उनकी किताब द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड 1949, जिसने वो मशीन में भूत वाली बात कही।
बिल्कुल, ये उनकी सबसे प्रभावशाली किताब है और इसका केंद्रीय तर्क यही है कि मन और शरीर को दो अलग अलग तरह की चीजों की तरह देखना, एक फिजिकल शरीर और एक नॉन फिजिकल मन, ये बुनियादी तौर पर एक तार्किक गलती है।
कोई वैज्ञानिक गलती नहीं बल्कि लॉजिकल गलती है।
हाँ, लॉजिकल गलती, और इसी को उन्होंने नाम दिया श्रेणी दोष या कैटेगरी मिस्टेक।
ये कैटेगरी मिस्टेक क्या है, इसे थोड़ा और समझाएंगे? उन्होंने कोई उदाहरण दिया था?
हाँ, उन्होंने एक बहुत सरल और प्रसिद्ध उदाहरण दिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी घूमने आता है, आप उसे सारे कॉलेज दिखाते हैं, लाइब्रेरी, लैब्स, खेल के मैदान, ऑफिस, सब कुछ।
ठीक है।
और सब देखने के बाद वो पूछता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी कहाँ है?
अच्छा।
वो ये नहीं समझ पा रहा कि यूनिवर्सिटी इन सब से अलग कोई एक बिल्डिंग नहीं है। बिल्कुल, वो ये नहीं समझ रहा कि यूनिवर्सिटी इन सब चीजों का संगठन है, एक व्यवस्था है। राइल कहते हैं, ठीक यही गलती हम मन के साथ करते हैं। हम सोचते हैं कि शरीर के साथ साथ कोई और चीज है, मन, जो कहीं अंदर छिपी बैठी है। हम उसे गलत कैटेगरी में डाल रहे हैं।
तो फिर सोचना, चाहना, इरादा करना, समझना, ये सब क्या है अगर कोई अंदरूनी मन नहीं है?
राइल का जवाब है कि ये शब्द किसी छिपी हुई आंतरिक अवस्था या प्रक्रिया को नहीं बताते। ये बताते हैं कि हम कुछ खास तरीकों से व्यवहार करने की क्षमता रखते हैं। ये हमारी वैसी प्रवृत्ति है।
प्रवृत्ति मतलब?
मतलब जैसे हम कहते हैं कि शीशा नाजुक है, ये उसकी कोई छिपी हुई अवस्था नहीं है। इसका मतलब है कि अगर उसे गिराया जाएगा तो वो टूट जाएगा। ये उसकी एक प्रवृत्ति है जो खास परिस्थितियों में जाहिर होती है।
अच्छा, तो वैसे ही बुद्धिमान होना।
हाँ, किसी को बुद्धिमान कहने का मतलब है कि वो मुश्किल सवाल हल कर सकता है, सोच समझ कर काम करता है, नई चीजें सीख सकता है वगैरह। उसकी बुद्धिमानी उसके कामों में दिखती है, उसके दिमाग के अंदर किसी स्क्रीन पर नहीं। ये सार्वजनिक है, निजी नहीं।
यानी मन कोई प्राइवेट थिएटर नहीं बल्कि पब्लिक परफॉर्मेंस है एक तरह से।
आप कह सकते हैं मन हमारे व्यवहार करने का तरीका है। उनकी एक और किताब थी डायलेमाज 1954, उसमें किस तरह की बातें थीं?
डायलेमाज यानी दुविधाएं।
हाँ, उसमें उन्होंने ऐसी दार्शनिक पहेलियों पर फोकस किया जो दो स्थापित विचारों के टकराव से पैदा होती हैं, जैसे क्या सब कुछ पहले से तय है, नियतिवाद, या हमारे पास चुनने की आजादी है, स्वतंत्र इच्छा।
ये तो क्लासिक पहेलियां हैं।
और यहां भी रायल का तरीका अलग था। वो इन समस्याओं का हल निकालने के बजाय उन्हें भंग करने की कोशिश करते थे।
भंग करना मतलब इग्नोर करना?
नहीं, इग्नोर करना नहीं। उनका मानना था कि ये समस्याएं अक्सर भाषा के गलत इस्तेमाल या वैचारिक भ्रमों की वजह से पैदा होती हैं। अगर हम अपनी भाषा को साफ कर लें, ये समझ लें कि हम शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, तो शायद वो समस्या अपने आप खत्म हो जाए, क्योंकि वो असल में समस्या थी ही नहीं, बस एक भाषाई उलझन थी।
अच्छा, ये तो दिलचस्प अप्रोच है, भाषा की सफाई करके समस्या को ही गायब कर देना। उन्होंने प्लेटो पर भी लिखा था, प्लेटोस प्रोग्रेस 1966।
जी, उसमें उन्होंने प्लेटो के डायलॉग्स को सिर्फ दार्शनिक सिद्धांत बताने वाला टेक्स्ट नहीं माना, बल्कि उन्हें एक तरह का दार्शनिक अभ्यास, फिलोसॉफिकल एक्सरसाइज समझा। ये दिखाता है कि वो ऐतिहासिक टेक्स्ट पर भी अपना भाषाई विश्लेषण कैसे लागू करते थे।
और वो जो आपने पहले इशारा किया था, कैसे जाने और क्या जाने का फर्क, ये भी रायल का एक बड़ा योगदान है।
कैसे जाने है कौशल या हुनर, जैसे साइकिल चलाना जानना।
और राइल का कहना था कि फिलॉसफी ने हमेशा क्या जाने को ज्यादा महत्व दिया है।
बिल्कुल, जबकि हमारी असल जिंदगी की ज्यादातर समझदारी, हमारी काबिलियत, वो कैसे जाने में दिखती है। खाना बनाना, तैरना, बात करना, समस्या हल करना, ये सब कैसे जाने हैं, ये सिर्फ तथ्य रटने से नहीं आता।
तो कुल मिलाकर राइल का जोर इस बात पर था कि मन अंदर नहीं बाहर है, मतलब हमारे व्यवहार में, हमारी क्षमताओं में जाहिर होता है। इसे एंटी इंटरनलिज्म कह सकते हैं।
हाँ, एंटी इंटरनलिज्म, मन कोई निजी आंतरिक रंगमंच नहीं है। और उनका तरीका था सामान्य भाषा का विश्लेषण, रोजमर्रा की भाषा को ध्यान से देखो और समझो कि हम शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं ताकि दार्शनिक भ्रमों से बच सकें।
इसका असर क्या हुआ फिलॉसफी पर?
असर काफी गहरा और दूरगामी था। उन्होंने मन के दर्शन की दिशा ही बदल दी। उसे मेटाफिजिक्स की अटकलों से हटाकर व्यवहार और भाषा के विश्लेषण की ओर मोड़ा। उन्होंने एक तरह से दार्शनिक व्यवहारवाद, फिलोसफिकल बिहेवियरिज्म के लिए जमीन तैयार की। हालांकि वो खुद को व्यवहारवादी कहलाना पसंद नहीं करते थे।
अच्छा, वो खुद को व्यवहारवादी नहीं मानते थे?
नहीं, उनका कहना था कि वो सिर्फ मानसिक अवधारणाओं के तर्क को स्पष्ट कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि मानसिक अवस्थाएं सिर्फ व्यवहार हैं। उनके काम ने बाद में फंक्शनलिज्म जैसे विचारों को भी प्रभावित किया और उनकी जो विश्लेषण की पद्धति थी उसने तो पूरे एनालिटिक फिलॉसफी के काम करने के तरीके पे छाप छोड़ी।
अगर दूसरे दार्शनिकों से तुलना करें, डेकार्त से तो सीधी भिड़ंत थी ही।
हाँ, डेकार्त के द्वैतवाद पर तो वो सीधा हमला था। विट्गेनस्टाइन से उनका लक्ष्य मिलता जुलता था, भाषा से भ्रम दूर करना, पर रायल का तरीका ज्यादा सिस्टमैटिक था, अकादमिक था।
और स्किनर जैसे मनोविज्ञानिक व्यवहारवादियों से कैसे अलग थे?
स्किनर का फोकस था उत्तेजना प्रतिक्रिया के वैज्ञानिक अध्ययन पर प्रयोगशाला में। रायल का फोकस था मानसिक अवधारणाओं के तार्किक विश्लेषण पर कि हम जानना, सोचना, इरादा करना जैसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं और उनका मतलब क्या है। वो मनोविज्ञान नहीं, दर्शन कर रहे थे। और तार्किक प्रत्यक्षवादियों से भी अलग थे क्योंकि वो मेटाफिजिक्स को खत्म नहीं करना चाहते थे, बस उसमें मौजूद वैचारिक उलझनों को सुलझाना चाहते थे।
लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड इतनी प्रभावशाली होने के बावजूद इसकी आलोचना भी हुई होगी?
हाँ, बिल्कुल हुई, और काफी जोरदार आलोचना हुई। सबसे आम आरोप तो यही लगा कि ये व्यवहारवाद है, कि रायल मन के अंदरूनी पहलू, हमारे निजी अनुभव जिसे दार्शनिक क्वालिया कहते हैं, उसकी पूरी तरह से अनदेखी कर रहे हैं।
क्वालिया यानी वो व्यक्तिपरक एहसास जैसे दर्द का महसूस होना या लाल रंग का दिखना। सिर्फ ये जानना नहीं कि दर्द हो रहा है या रंग लाल है, बल्कि उसका जो निजी अनुभव है।
बिल्कुल वही। थॉमस नेगल जैसे बाद के दार्शनिकों ने कहा कि रायल का नजरिया ये नहीं बता सकता कि किसी चीज को अनुभव करना कैसा लगता है, व्हाट इट्स लाइक टू बी अ बैट वाला उनका मशहूर लेख। रायल पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने डेकार्त के विचारों को शायद थोड़ा ज्यादा सरल करके पेश किया, जिसे स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट कहते हैं।
और उनकी पद्धति पर भी सवाल उठे कि क्या सिर्फ भाषा का विश्लेषण करके गहरी समस्याएं हल हो सकती हैं।
हाँ, ये सवाल भी उठा। और फिर बाद में संज्ञानात्मक विज्ञान यानी कॉग्निटिव साइंस का उदय हुआ। वो दिमाग के अंदर सूचना प्रसंस्करण, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कंप्यूटेशनल मॉडल वगैरह की बात करने लगा। इसने रायल के उस विचार को चुनौती दी कि अंदर कुछ नहीं देखना है।
तो क्या इन आलोचनाओं और कॉग्निटिव साइंस के आने के बाद रायल अप्रासंगिक हो गए?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी स्थायी प्रासंगिकता कई वजहों से है। पहली बात, मन शरीर के भोले द्वैतवाद की उनकी आलोचना आज भी बहुत मजबूत है। वो हमें आगाह करते हैं कि मन को शरीर से बिल्कुल अलग कोई रहस्यमय चीज न समझें।
और कैसे जाने बनाम क्या जाने वाला फर्क?
वो तो आज भी ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, नैतिकता, खासकर वर्चू एथिक्स, शिक्षा, कौशल विकास, इन सब क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
ये सोचने वाली बात है। आज के जमाने में जहाँ गूगल पर हर तथ्य क्या जाने मौजूद है, क्या हम असली हुनर कैसे जाने को नजरअंदाज कर रहे हैं?
ये वाकई एक अहम सवाल है जो रायल के विचारों से उठता है। इसके अलावा चेतना, कॉन्शियसनेस को लेकर जो बहसें एआई और न्यूरोसाइंस में चल रही हैं, उनमें रायल की ये चेतावनी आज भी काम की है कि हम अपनी अवधारणाओं और भाषा को लेकर सावधान रहें। और उनकी जो विश्लेषण की पद्धति है, वो तो आज भी दुनिया भर में फिलॉसफी पढ़ाने का एक अहम हिस्सा है।
उनके कुछ कथन भी उनके विचारों को बखूबी सामने लाते हैं, जैसे वो मशीन में भूत पर कहते हैं।
हाँ, उनका वो मशहूर वाक्य, मशीन में भूत का सिद्धांत, यह एक बड़ी गलती है और एक खास किस्म की गलती है, अर्थात यह एक श्रेणी दोष है। वो साफ कह रहे हैं कि यह तथ्यों की गलती नहीं, तर्क की, वर्गीकरण की गलती है।
और एक और जो उनके व्यवहार पर जोर को दिखाता है, प्रकट बुद्धिमान प्रदर्शन मन की कार्यप्रणाली के सुराग नहीं है, वे ही वह कार्यप्रणाली है।
बिल्कुल, मतलब बुद्धिमानी कोई अंदर छिपी चीज नहीं है जिसका हमें सुराग मिलता है, बल्कि बुद्धिमानी भरा काम करना ही मन की कार्यप्रणाली है।
और मिथक वाली बात भी दिलचस्प है।
हाँ, वो कहते हैं एक मिथक कोई परिकथा नहीं है, यह एक श्रेणी से संबंधित तथ्यों को दूसरी श्रेणी के लिए उपयुक्त मुहावरों में प्रस्तुत करना है। यानी द्वैतवाद कोई झूठी कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसे गलत ढंग से गलत कैटेगरी की भाषा में बताया जा रहा है जिससे भ्रम पैदा होता है।
विचारों से हटकर रायल खुद एक दिलचस्प इंसान लगते हैं। उनके बारे में कुछ किस्से भी हैं, उनकी हाजिर जवाबी का जिक्र आता है।
हाँ, एक किस्सा मशहूर है। कहते हैं किसी ने उनसे पूछा, प्रोफेसर रायल क्या आप व्यवहारवादी हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत गुस्सैल आदमी हूँ, इसलिए सावधान रहें। ये उनका अंदाज था, थोड़ी शरारत, थोड़ा कटाक्ष और गहरी बात। इसे ऑक्सफोर्ड मैनर भी कहा जाता था।
अपनी किताब की सफलता के बावजूद वो लाइमलाइट से दूर ही रहे।
हाँ, उन्हें अकादमिक माहौल ही पसंद था और दार्शनिकों की जो एक छवि होती है कमरे में बंद रहने वाले की, उसके विपरीत थे। उन्हें सेलिंग का शौक था, बाहर घूमना पसंद था।
अच्छा, और पाइप पीने और लंबी सैर के भी शौकीन थे।
जी हाँ, और जर्मन और फ्रेंच भी बहुत अच्छी बोलते थे। भाषा की बारीकियों की समझ तो उनमें कूट कूट के भरी थी।
तो अगर हम रायल की विरासत को समेटना चाहें तो मुख्य बातें क्या होंगी?
मुख्य बात तो यही है कि उन्होंने कैटेगरी मिस्टेक की अवधारणा से मशीन में भूत वाले पारंपरिक द्वैतवाद को जबरदस्त चुनौती दी। उन्होंने हमें मन को हमारी क्षमताओं, प्रवृत्तियों और व्यवहार में देखने का नजरिया दिया।
और उनकी पद्धति, भाषा का विश्लेषण,
वो भी उतनी ही अहम है। दार्शनिक समस्याओं को सिर्फ हल करने के बजाय उन्हें भाषा के विश्लेषण से भंग करने का विचार बहुत प्रभावशाली रहा है।
आलोचनाओं के बावजूद उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं।
हाँ, आलोचनाओं को स्वीकार करते हुए भी ये कहना होगा कि द्वैतवाद की उनकी आलोचना कैसे जाने और क्या जाने का भेद और भाषा के प्रति उनका सतर्क नजरिया आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर मन, चेतना और एआई पर चल रही बहसों में।
तो अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। रायल का जोर बाहरी व्यवहार और प्रवृत्तियों पर था। आजकल अपने अंदर के सच्चे स्व, ट्रू इनर सेल्फ को खोजने की बहुत बात होती है। रायल के नजरिए से देखें तो इस अंदर के स्व का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये भी हमारे व्यवहार और प्रवृत्तियों का ही एक पैटर्न है, या फिर जैसा हमने पहले कहा, इस सूचना प्रधान युग में क्या हम तथ्यों, क्या जाने के पीछे भागते हुए हुनर कैसे जाने को वाकई में कमाक रहे हैं? सोचेगा जरूर।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक चित्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।